होशे अध्याय दो, होशे अध्याय दो पद एक। इसलिए तुम लोग अपने भाइयों से अमी। यहां देखिए, परमेश्वर ने लो अमी में से लो निकाल दिया है, जिसका अर्थ है नहीं। अमी का अर्थ है मेरे लोग, अर्थात परमेश्वर उन्हें फिर मेरे लोग कह रहा है। होशे अध्याय दो पद एक में आगे लिखा है, और अपनी बहनों से रूहामा कहो, अर्थात कृपा प्राप्त की जा चुकी है। इसलिए नकारात्मक लो को इस अध्याय में से निकाल दिया है। होशे अध्याय दो पद एक से लेकर सात तक। इसलिए तुम लोग अपने भाइयों से अमी और अपने बहनों से रूहामा कहो, अपनी माता से विवाद करो विवाद, क्योंकि वो मेरी स्त्री नहीं और ना मैं उसका पति हूं। वो अपने मुंह पर से अपने छिनालापन को और अपनी छातियों के बीच से व्यभिचारों को अलग करे, नहीं तो मैं उसके वस्त्र उतार कर उसको जन्म के दिन के समान नंगी कर दूंगा और उसको मरुस्थल के समान और मरुभूमि सरीखी बनाऊंगा और उसे प्यास से मार डालूंगा। उसके लड़के बालों पर भी मैं कुछ दया ना करूंगा, क्योंकि वे कुकर्म के लड़के हैं। उनकी माता ने छिनाला किया है, जिसके गर्भ में वे पड़े उसने लज्जा के योग्य काम किया है। उसने कहा, मेरा यार जो मुझे रोटी पानी ऊन सन तेल और मद देते हैं, मैं उन्हीं के पीछे चलूंगी। इसलिए देखो, मैं उसके मार को कांटों से घेरूंगा और ऐसा बाड़ा खड़ा करूंगा कि वो राह ना पा सकेगी। वो अपने यारों के पीछे चलने से भी उन्हें ना पाएगी और उन्हें ढूंढने से भी ना पाएगी। तब वो कहेगी, मैं अपने पहले पति के पास फिर जाऊंगी, क्योंकि मेरी पहली दशा इस समय की दशा से अच्छी थी। इसराइल का उजाड़ा जाना तथा उसका अन्य जातियों में जाना और फिर विचार करना और इकरार करना, मैं परमेश्वर के पास लौट जाऊं, क्योंकि उसकी अधीनता इससे उत्तम है। होशे अध्याय दो पद आठ और नौ। परमेश्वर ने कहा, वो ये नहीं जानते थे कि अन्न नया दाखमधु और तेल मैं ही उसे देता था, और उसके लिए वो चांदी सोना जिसको वे बाल देवता के काम में ले आते हैं मैं ही बढ़ाता था। इस कारण मैं अन्न की ऋतु में अपने अन्न को और नए दाखमधु के होने के समय में अपने नए दाख मधु को हर लूंगा, और अपना ऊन और सन भी जिनसे वो अपना तन ढांपती है मैं छीन लूंगा। वे भूल गए थे कि उनके आशीषों का दाता परमेश्वर ही था। ऐसा प्रायः होता है कि हम परमेश्वर को, जो आशीषों का दाता है, भूल जाएं। हम अपनी समृद्धि अन्य बातों से जोड़ देते हैं। हम भूल जाते हैं कि भोजन वस्त्र धन दौलत सब परमेश्वर की देन है, और इसका परिणाम ये होता है कि हम परमेश्वर की आशीषों का दुरुपयोग करने लगते हैं, जो परमेश्वर के विरुद्ध है। इसराइली परमेश्वर द्वारा दिया गया अन्न और तेल बाल देवता को चढ़ाने लगे थे। परमेश्वर ने उन्हें सोना और चांदी दिया। उन्होंने सोने और चांदी से बाल और मोले की मूर्तियां बना दी कि उनकी उपासना करें। आज की हमारी स्थिति यही है। परमेश्वर ने लोगों को मधुर वाणी दी है, परंतु वे अपने गले का प्रयोग इश निंदा करने में करते हैं। जिन्हें लिखने का वरदान है, वे परमेश्वर विरोधी साहित्य लिखते हैं। जिन्हें परमेश्वर ने तीक्ष्ण बुद्धि दी है, वे सिद्ध कर रहे हैं कि परमेश्वर है ही नहीं, कि विश्वासियों को पथ भ्रष्ट करे। हम परमेश्वर की आशीषों को परमेश्वर के विरोधी काम में ले रहे हैं। परमेश्वर ने कहा, मैं अन्न की ऋतु में अन्न को हर लूंगा। यदि आप परमेश्वर की आशीषों का दुरुपयोग करेंगे तो वो आपसे आशीषें छीन लेगा। ये सत्य है कि दुरुपयोग के कारण अनेकों ने परमेश्वर द्वारा दिए गए वरदानों को खो दिया है। अब परमेश्वर कहता है, होशे अध्याय 2 पद 10 से लेकर 13 तक, अब मैं उसके यारों के सामने उसके तन को उधाड़ूंगा और मेरे हाथ से कोई उसे छुड़ा न सकेगा, और मैं उसके पर्व, नए चांद और विश्राम दिन आदि सब नियत समयों के उत्सवों का अंत कर दूंगा, और मैं उसकी दाख लताओं और अंजीर के वृक्षों को, जिनके विषय वे कहती है कि ये मेरे छिनाले की प्राप्ति है जिसे मेरे यारों ने मुझे दी है, उन्हें ऐसे उजाड़ूंगा कि वे जंगल से हो जाएंगे और वन पशु उन्हें चर डालेंगे, और वे दिन जिनमें वो बाल देवताओं के लिए धूप जलाती। यारों ने अर्थात विभिन्न देवताओं ने जिनके आगे वे धूप जलाते थे। होशे अध्याय 2 पद 13 में आगे लिखा है, और नथ और हार पहने अपने यारों के पीछे जाती और मुझको भूले रहती है। उन दिनों का दंड मैं उसे दूंगा, यहोवा की यही वाणी है। परमेश्वर की इसराइल से यही शिकायत थी कि वे उसे भूलकर अन्य देवताओं के पीछे भागते थे। होशे अध्याय 2 पद 14, इसलिए देखो, यहोवा ने कहा, मैं उसे मोहित करके जंगल में ले जाऊंगा और वहां उसे शांति की बातें करूंगा। ये उस समय की भविष्यवाणी है जब महाक्लेश आएगा। उस समय परमेश्वर इसराइल राष्ट्र के कुछ लोगों को जंगल में ले जाएगा और वहां 3.5 वर्ष तक उनकी सुधि लेगा। प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय में पढ़ते हैं कि परमेश्वर उन्हें उकाब के पंख देगा कि उन्हें जंगल में उड़ाकर ले जाया जाए, जहां 3.5 वर्ष तक उनकी सुधि ली जाएगी। यीशु ने इसी विषय में कहा था, मत्ती अध्याय 24 पद 15 से लेकर 18 तक, जब तुम उस उजाड़ने वाली घृणित वस्तु को, जिसकी चर्चा दानियल भविष्यत वक्ता के द्वारा हुई थी, पवित्र स्थान में खड़ी हुई देखो, तब जो यहूदिया में हो वे पहाड़ों पर भाग जाए, जो कोठे पर हो वो अपने घर में से सामान लेने को ना उतरे, और जो खेत में हो वो अपना कपड़ा लेने को पीछे ना लौटे। भविष्यत वक्ता यशाया अध्याय 26 में कहता है, यशाया अध्याय 26 पद 20, हे मेरे लोगों, आओ अपनी अपनी कोठरी में प्रवेश करके किवाड़ों को बंद करो, थोड़ी देर तक, जब तक क्रोध शांत न हो, तब तक अपने को छिपा रखो। इसलिए देखो, मैं उसे मोहित करके जंगल में ले जाऊंगा। परमेश्वर फिर से उनकी सुधि लेगा जब पाप का मनुष्य उन पर महाक्लेश डालेगा, और इससे शांति की बातें कहूंगा। होशे अध्याय 2 पद 15, और वही मैं उसको दाख की बारिया दूंगा और आकोर की तराई को आशा का द्वार कर दूंगा। आकोर की तराई वो क्षेत्र है जो कि यरीहो से ऊपर बेतेल तक पहुंचा है। आकोर का अर्थ है परेशानी। जब इसराइल की प्रजा ने यरीहो को जीत लिया था और वे उस प्रतिज्ञा के देश में आगे बढ़ रहे थे, तब ए नगर तक आकर कुछ लोगों ने यहोशू से कहा, पूरी सेना भेजने की आवश्यकता नहीं है, हम ही जाकर ए नगर को हरा देंगे और सारी लूट लेकर आ जाएंगे। जब वे वहां युद्ध करने पहुंचे तो ए नगर के निवासियों ने उन्हें खदेड़ दिया। वे यहोशू के पास आए, यहोशू मुंह के बल गिरकर यहोवा से प्रार्थना करने लगा यहोवा ने उससे कहा, तू मेरे सामने क्यों रोता है? तू अब प्रार्थना क्यों करता है? यदि सब ठीक होता तो तुम लोग विजयी होते। तुम्हारी छावनी में पाप है। परमेश्वर ने यहोशू पर प्रकट किया कि आकान ने यरीहो से जो लूट कर लाए उसमें से कुछ लूट अपने पास रख ली थी। लूट सारी की सारी यहोवा को चढ़ाना था। यहोवा ने कहा, सबसे पहला मेरा है, तब जो कुछ बचता है वो तुम लोग आपस में बांट सकते हो। पहला फल सदैव परमेश्वर का है। यरीहो उनके विजय अभियान का पहला फल था, अतः वो पूरा का पूरा परमेश्वर का था। आकान को शिनार देश का एक सुंदर ओढ़ना अच्छा लगा था, अतः उसने वो वस्त्र चुरा लिया था। ये काम आकोर की घाटी में किया गया था, इसलिए उस घाटी का नाम परेशानी की घाटी रखा गया। आकोर की तराई, यही तराई फिर से उन लोगों के लिए आशा का द्वार होगी। होशे अध्याय 2:15 में आगे लिखा है, और वहां वो मुझसे ऐसी बातें कहेगी जैसी अपनी जवानी के दिनों में अर्थात मिस्र देश से चले आने के समय कहती थी। महाक्लेश के बाद जब प्रभु का आगमन होगा और इसराइली जन जंगल से निकलकर वापस इसराइल में आएंगे, तब वे इस आकोर की तराई से होकर प्रवेश करेंगे। तब वे भी उसी प्रकार भजन गाएंगे जिस प्रकार इसराइली प्रतिज्ञा के देश में प्रवेश करते समय यहोशू की अगुवाई में आनंद से गा रहे थे। अतः वे भविष्य के इस महिमामय दिन में सियोन की ऊंचाइयों पर गाएंगे। होशे अध्याय 2:16, और यहोवा की ये वाणी है कि उस समय तू मुझे इशी कहेगी और फिर बाली ना कहेगी। इशी अर्थात मेरे पति है और बाली बाल का बहुवचन है। होशे अध्याय 2:17-18, क्योंकि भविष्य में मैं उसे बाल देवताओं के नाम ना लेने दूंगा और ना उनके नाम फिर स्मरण में रहेंगे, और उस समय मैं उनके लिए वन पशुओं और आकाश के पक्षियों और भूमि पर के रेंगने वाले जंतुओं के साथ वाचा बांधूंगा, और धनुष और तलवार तोड़कर युद्ध को उनके देश से दूर कर दूंगा, और ऐसा करूंगा कि वे लोग निडर सोया करेंगे। ये यशिया किसी भविष्यवाणी है जहां वो कहता है कि वे अपनी तलवारें पीटकर हल के फाल बनाएंगे और भालों को हलियों में बदल देंगे। वे पशुओं के साथ वाचा बांधेंगे, हिंसक पशु हिंसक न रह जाएंगे, शेर घास खाएगा और बैल के साथ बैठेगा, छोटा बच्चा भी उनकी अगुवाई कर पाएगा, संपूर्ण प्राणी जगत शांति में वास करेगा, संपूर्ण पृथ्वी पर परमेश्वर शांति की स्थापना करेगा, युद्ध समाप्त हो जाएंगे और मनुष्य सुरक्षित होकर शांति से सोएगा। होशे अध्याय 2:19, और मैं सदा के लिए तुझे अपनी स्त्री करने की प्रतिज्ञा करूंगा। परमेश्वर उन्हें सदा के लिए फिर से स्थापित कर देगा। होशे अध्याय 2:19-20, और ये प्रतिज्ञा धर्म और न्याय और करुणा और दया के साथ करूंगा, और ये सच्चाई के साथ की जाएगी, और तू यहोवा को जान लेगी। इस भविष्यवाणी का पूरा होना अभी बाकी है। जब परमेश्वर की महिमा का परिपूर्ण कार्य इसराइल राष्ट्र और इसराइलियों के लिए किया जाएगा। होशे अध्याय 2:21-23 तक, और यहोवा की ये वाणी है कि उस समय मैं आकाश की सुनकर उनको उत्तर दूंगा, और वो पृथ्वी की सुनकर उसे उत्तर देगा, और पृथ्वी अन्न, नए दाखमधु और ताजे तेल की सुनकर उनको उत्तर देगी, और वे इज़राइल को उत्तर देंगे, और मैं अपने लिए उस देश में बोऊंगा और लो रूहामा पर दया करूंगा, और लो अमी से कहूंगा, तू मेरी प्रजा है, और वो कहेगा, हे मेरे परमेश्वर। ये इसराइल के पुनरुद्धार की भविष्यवाणी है। आपको ध्यान होगा कि प्रेरितों के काम की पुस्तक में भी पत्रस यही कहता है, प्रेरितों के काम अध्याय 3:2, अवश्य है कि वो उस समय तक रहे जब तक कि वो सब बातों का सुधार ना कर लें। पत्रस इसी पुनरुद्धार के बारे में कह रहा था। ये सर्वभौमिक मानवीय पुनरुद्धार नहीं है, ये इसराइल राष्ट्र का पुनरुद्धार है कि वे कहे, तू मेरा परमेश्वर है, और परमेश्वर कहेगा, तुम मेरी प्रजा हो। परमेश्वर फिर से उन्हें अपनी विश्वास योग्यता में, अपने प्रेम में, अपनी करुणा में स्त्री स्वीकार करेगा। इन लोगों के प्रति परमेश्वर का प्रेम समाप्त नहीं होता है, उनके लिए परमेश्वर के प्रेम का निवारण नहीं है। इस महिमा के समय जब उनका पुनरुद्धार होगा और वे परमेश्वर को पहचानेंगे, वह भी उन्हें स्वीकार करेगा।